ओम शांति। आज हम आप सबके सामने वो चीज शेयर करने जा रहे हैं जो छुपा हुआ है। बीज हमेशा छुपा रहता है, पेड़ फल फूल दिखाई देता है। आज संस्था इतना ऊपर आया है, इतना सब सेवाएं हो रही है, उसका बीज क्या है? तो बीज के बारे में, संस्था कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ी सी अनुभव शेयर करूंगा। तो 1936 में, आज जिनको हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, वो एक साधारण परिवार में, कृपलानी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके फादर टीचर थे, अब आप सोच सकते हैं। लेकिन वो इतने कर्मठ थे, उनका नाम लेखराज था। उनकी दिव्यता से, उनकी चरित्र से, उनके व्यक्तित्व से थोड़े दिन में पढ़ाई पूरा किया, बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में वो इतने आगे गए, थोड़े दिन में उनको समाज से बहुत सम्मान मिलने लगा। क्यों? वो बड़े चरित्रवान थे, उदार थे, दयालु थे, गरीबों को बहुत मदद करते थे, भक्ति भाव में बहुत भावना थी। कोई तीर्थ नहीं रहा है भारत में जहां बाबा गए नहीं हैं। हम सब यहां जो भी बैठे हैं, किसी के एक दो गुरु होंगे। बाबा ने 10 गुरु किया था। क्यों? उनको था कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो। भक्ति में इतना डूबे हुए थे, इतना ये था कि बाबा ट्रेन में जा रहे हैं, पहले इतनी फ्लाइट नहीं होती थी, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जब तक गीता का पाठ नहीं करेंगे तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। गुरु 10 इसलिए किया कि कोई भी भगवान का रास्ता बता दे या भगवान से मिला दे। एक गुरु किया, दो गुरु किया, पांच गुरु किया, सात गुरु किया, किसी ने बताया नहीं। बिजनेस में आगे बढ़ते गए, बॉम्बे में बिजनेस शुरू किया, बॉम्बे से कलकत्ता गए, हीरे जवाहरात के लास्ट में मर्चेंट बने। इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने पार्टनर के साथ शुरू किया। हीरे जवाहरात के बहुत परखी थे, मुट्ठी में ले लें, हाथ में ले लें तो बता देंगे कि इतना परसेंट ये हीरा का करेक्ट है। इतनी परखी थे बाबा, इतने चरित्रवान थे कि उनका संबंध राजाओं के साथ था। राजाओं के परिवार कहीं दुकान में नहीं जाते हैं, बाबा को लोग बुलाते थे, नई नई ज्वेलर्स, नई नई चीजें बना करके बाबा उनके दरबार में जाते थे, राजाओं के घरों में जाते थे और वहां उन लोगों को दिखाते थे, जिसको जो चाहिए वहां दे करके आते थे। राजाओं की इतनी भावना थी। एक बार उदयपुर के महाराजा, उसको सभा स्टार्ट करनी थी, टाइम पर वो लोग करते थे। बाबा किसी कारणवश, बाबा को निमंत्रण दिया तो किसी कारणवश बाबा थोड़ी लेट पहुंचे, तब तक महाराजा ने सभा को ये करके रखा कि नहीं, लक्खी बाबू आएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। इतना रिस्पेक्ट देते थे। 1936 में बाबा बनारस आए, बाबलीनाथ का मंदिर आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा, नाम सुना होगा। बाबलीनाथ के मंदिर के पास उनका फ्रेंड का कोठी था, तो फ्रेंड के पास ठहरे थे। तो फ्रेंड के शाम का टाइम था, बाबा सत्संग मंदिर में होता ही है, जा करके बाबा बैठे थे। बाबा इतना आज्ञाकारी थे कि कभी भी सत्संग में जाते थे तो उठते नहीं थे जब तक सत्संग पूरा न हो जाए। उस दिन क्या हुआ कि उनको कुछ ऐसी फीलिंग आई, वो उठ करके अपने रूम में चले गए। उनके रिश्तेदारों ने देखा बाबा को शायद कुछ तबीयत खराब है, इसलिए सभा से गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं और बाबा उठ के जाएं, ये पहली बार हो रहा है, जरूर कुछ तबीयत खराब होगी, इसलिए बाबा उठ करके रूम में गए। पीछे पीछे उनकी पुत्र वधु ब्रजेंद्रा दादी जिनको बोलते हैं, वो गई कि बाबा को क्या हुआ है। तो वहां देखा कि रूम एकदम लाल लाल, कहीं लाइट रेड लाइट उसमें नहीं थी, लेकिन बाबा के अवतरण एकदम पूरा रूम लाल। बाबा बैठे हैं रूम में, वो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। पहली लेडीज कहेंगे, पहला महिला कहेंगे कि भगवान को रिसीव किया। और जब बाबा आए तो बाबा के हाव भाव सब कुछ बदल गया। बाबा के सामने कोई भी जाए तो अशरीरी हो जाए, उनको साक्षात्कार हो जाए। नॉर्मल व्यक्ति थोड़े ही देर में इतनी परिवर्तन। फिर बाबा जब नॉर्मल शिव बाबा चले गए तो बाबा पूछते क्या हुआ, हम यहां कैसे आ गए, आप लोग यहां कैसे हैं, प्रवचन पूरा हो गया। उनको आश्चर्य हो रहा है, मैं ऐसे गलती कैसे कर दिया। फिर उनको उपराम वृत्ति हो गई। फिर उनको आदेश हुआ कि आपको 1936 की बात कर रहा हूं, उनको साक्षात्कार हुआ दोबारा कि आपको नई दुनिया स्थापन करना है और आपको उस दुनिया के मालिक बनना है, आपको श्री नारायण बनना है, आपको श्री कृष्ण बनना है, दैवी दुनिया स्थापन करनी है। वो नारायण के भगत थे, नारायण की पूजा करते थे, अपने गद्दी पर नारायण का फोटो रख करके आरती करके कारोबार शुरू करते थे। लेकिन उस दिन आवाज हुआ कि नहीं आपको ऐसा बनना है। वो तो आश्चर्य में हो गए कि इनको तो हम भगवान मानते हैं, मैं भगवान कैसे बन सकता हूं। धीरे धीरे राज बाबा ने क्लियर किया और बाबा को उपराम हो गए। तो बॉम्बे से बनारस अपने फ्रेंड के कोठी में चले गए। बनारस में भी रात को उनको साक्षात्कार हुआ, रूम वैसे ही लाल लाल हो गया, आवाज हो रही है निजानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, शक्ति स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा उठ गए, ये क्या हो रहा है, कहां से आवाज आ रही है, इतनी लाइट कहां से आ रही है। बाबा धीरे से दरवाजा खोल करके फ्रेंड के कोठी के अंदर ही, मैंने बहुत बड़ा गार्डन था, रात्रि को वो जा रहे हैं अंधेरे में, अंधेरा है, कहीं लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, लेकिन बाबा की लाइट है कि उस उनको कोई अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है। जाकर के एक थल्ला बना हुआ था बगीचे में, वहां बैठ गए। फिर से उनको साक्षात्कार हुआ, ये सृष्टि का विनाश हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई एक हो रहा है, कोई कष्ट में है, कोई शरीर छोड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद बाबा को जब होश आया, देखा यहाँ तो कोई शरीर छोड़ा नहीं है, कोई ये नहीं है, किसी को इतना ये हुआ है, कहीं ब्लड के ड्रॉप भी नहीं है, ये क्या हो रहा है, आश्चर्य। वहां से उनको वैराग हुआ, वहां से उनको डायरेक्शन मिली कि अब आपको हीरे जवाहरात के बिजनेस नहीं करनी है, अब आपको नई दुनिया स्थापन करनी है। जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं, शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान सबको, ये ज्ञान का धंधा करना है, ये ज्ञान सबको देना है। अरे मुझे ही ज्ञान नहीं है तो हम ज्ञान दूसरों को क्या दे सकते हैं, बाबा को आश्चर्य हुआ। लेकिन वहां से डायरेक्शन मिलता गया तो बाबा ने वहीं से टेलीग्राम कर दिया अपने पार्टनर को कलकत्ता में कि भाई हमको ये कौड़ियों के बिजनेस नहीं करना है, ये पत्थरों की बिजनेस मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान की बिजनेस करना है। पार्टनर समझा कि ये इतना परखने वाला व्यक्ति हीरे को आज कौड़ी कह रहा है, पत्थर कह रहा है, जरूर कुछ इनको दिमाग पर कुछ हुआ है, किसी ने कुछ किया है। फिर बाबा बनारस से कलकत्ता गए, वकील को बुला करके पार्टनर से ये कर दिया कि नहीं, जो कुछ हमारा बनता है आप दे दीजिए, जो देना है दे दीजिए। उनके पार्टनर ने जो कुछ दिया वो स्वीकार कर दिया, ले लिया, लेकर के बिजनेस को बैंड अप करके कराची आ गए, घर आ गए। सबको पता लग गया कि बाबा को कुछ ईश्वरीय साक्षात्कार हुआ है, बाबा के जीवन में परिवर्तन हुआ है। इतना बड़ा बिजनेस वाइंड अप करने के लिए बच्चों से राय नहीं लिया, स्त्री से राय नहीं लिया, संबंधियों से राय नहीं लिया, ईश्वर के डायरेक्शन से वाइंड अप कर दिया। घर लौटे तो बाबा के जीवन में इतनी परिवर्तन हो गई थी कि बाबा को जो देखे, बाबा जिनको भी दृष्टि दें वो शरीरी हो जाए, उनको साक्षात्कार हो जाए, तो अब कौन उनसे पूछे कि भाई आपने ये बिजनेस क्यों बंद कर दिया। स्त्री कैसे पूछ सकती है कि मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या होगा। वो तो नया जीवन देख रहे हैं, बाबा के जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं। बाबा जिनसे भी मिले उनको कहें कि आप आत्मा हो, उनकी लौकिक युगल का नाम जसोदा था, वो सामने आई, जसोदा आप आत्मा हो, आपको पता है आप आत्मा हो। आत्मा कहने से उसको आत्मिक रियलाइजेशन होगा, शरीर का बांध भूल गया। नहीं तो पति में उनका जसोदा मैया का इतना विश्वास, इतना श्रद्धा कि वो नाश्ता करा करके जब वो बिजनेस में जाते थे तो उनकी आरती उतार करके उनको तिलक लगा करके भेजती थी, पति व्रता नारी। और जब बाबा की प्रवेशता हुआ तो वो नारी उनको फरिश्ता के रूप में देख रही है और वो एक आत्मा के रूप में देख रहे हैं, आत्मा के रूप में बात कर रहे हैं, जसोदा तुम आत्मा हो। और आत्मा कहने से उसको रियलाइज हो रहा है, पति का भान खत्म हो गया कि ये मेरा पति है नहीं, ये बाबा है। फिर बाबा को वैराग आ गया और शिव बाबा के आदेश हुई, 11 माताओं बहनों की कमेटी बना दिया और कमेटी बना करके उनको हैंड ओवर कर दिया कि आज से यज्ञ का मालिक आप बनेंगे, आप ही रहेंगे, आप चलाइए यज्ञ को, और खुद न्यूट्रल हो गया। उस कमेटी में अपना नाम नहीं रखा, उस कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं बना, सेक्रेटरी नहीं बना, माताओं बहनों को बनाया और वो न्यूट्रल। उनके परिवार के, उनकी डॉटर निमो शांता दादी बहुत योग्य, बहुत होशियार वो थी, लेकिन उस कमेटी में निमो शांता दादी का नाम नहीं रखा, परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा, शिव बाबा के आदेश। नहीं तो चलो खुद नहीं है, चलो परिवार के बच्चों को रख ले, लेकिन बाबा ने नहीं रखा। और जब संस्था की ये हुई, बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे तो सब ट्रांस में चले जाते थे। कोई कृष्ण को देख रहा है, कोई नारायण को देख रहा है, स्वर्ग को कोई देख रहा है। तो पूरे सिंध में आवाज हो गया कि बाबा सत्संग कराते हैं, लोगों को साक्षात्कार होता है। तो जितने भी सिंध में साधु संत महात्मा थे, मंदिर थे, वो सब लोग बाबा के पास आने लगे, क्योंकि कौन नहीं चाहता साक्षात्कार हो, हमको साक्षात्कार हो, कृष्ण दिखाई दे, श्री नारायण दिखाई दे, हर व्यक्ति चाहता है। तो उन साधु संतों को छोड़ करके, मंदिरों को छोड़ करके बाबा के पास लोग आने लगे। अब उन लोगों ने यहां आकर के, उन बाबा किसी को कुछ कहते नहीं थे, बाबा ओम की ध्वनि लगाते थे और ओम की ध्वनि लगाने से लोग ट्रांस में चले जाते थे। एक हमारी मनोहर दादी थी जो यहां ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर बड़ी दादी ने बनाया था, तो वो अनुभव सुनाती थी कि छोटेपन में आए और बाबा के सत्संग में हम जाते थे, बाबा ओम की ध्वनि लगाता था, हम ट्रांस में चले जाते थे। तो हम घर में आए, क्योंकि एक घंटा दो घंटा सत्संग चलेगा, चार घंटा चलेगा, फिर घर तो आना ही है, नाश्ता करना है, घर में रहना है। वो घर में आई तो उसने सोचा कि बाबा ओम के ध्वनि लगाते हैं, हम सब ट्रांस में चले जाते हैं, हम अपने छत पर, उनके पड़ोस की कन्याएं, उनकी सखियां थी, उनको 5-7 को बुला करके और बाबा के बारे में बताया, सत्संग के बारे में बताया और ओम की ध्वनि लगाई, 7 कन्याओं में से 3 कन्याएं ट्रांस में चली गई। वो श्री कृष्ण को देख रही है, उसमें भी उनकी छोटी, मनोहर दादी की छोटी बहन थी, तो वो श्री कृष्ण को देख रही, उसके साथ डांस कर रही है। वो छत, उन दिनों में इतना बाउंड्री नहीं, ऊंचा नहीं होता था, छोटा सा बाउंड्री होता था, तो वो भागे श्री कृष्ण के साथ। तो दादी को ये लगे कि कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगा मेरे लिए, तो वो उनको पकड़े, तब तक वो दूसरा उधर किनारे भागे। ऐसे तो दादी डर गई तो मम्मी को अपने बुलाया, मम्मी देखो ये क्या हो रहा है। माँ आई तो माँ तो एंटी थी, ये नहीं चाहती थी, तो माँ ने कहा कि जरूर आपने कुछ किया होगा, इन लोगों को कुछ ये किया होगा। बोले कि मम्मी हम कुछ किया नहीं है, ओम की ध्वनि जरूर लगाया है और ओम की ध्वनि लगाया तो सब ट्रांस में चले गए और तब से ये डांस कर रहे हैं। तो उसकी माँ ने उनको कहा कि भाई ये काम आप सत्संग बाबा के पास ही करना, हमारे घर में नहीं करना, हमारे बच्चे, आप तो चले गए, जो हमारे बच्चियां हैं छोटी उनको भी आप नहीं अपने सत्संग में ले जाओ। तो जैसे तैसे वो नीचे उतरे तो मनोहर दादी को 100% विश्वास हो गया कि नहीं ये परमात्मा का काम है, उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बोला, परिवार को बोल दिया कि नहीं मैं परिवार में नहीं रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगी, समाज की सेवा करूंगी। बहुत बंधन हुआ, उन्होंने बंधनों को काट करके आ गए। उसी तरह यज्ञ में बहुत सारे भाई बहने समर्पित हो गए, आ गए, क्योंकि घर वालों ने निकाल दिया कि भाई हमारे साथ रहना है तो नॉन वेज खाना है, क्योंकि सिंधी परिवार में आप जानते हैं वो कॉमन चीज होता है, तो हमारे साथ रहना है तो लहसुन प्याज खाना है, नॉन वेज खाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, नॉन वेज नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे देवता बनना है और देवताओं के मंदिर में आप लोग भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हो, जब देवताओं को आप भोग नहीं लगाते हो तो मुझे देवता बनना है तो मुझे तो सहयोग दो, मुझे नहीं खाना है। तो उनके माँ बाप बहुत उनको ये किया, सताया, मना किया, बहुत कुछ ये किया, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने घर छोड़ करके आ गए। और छोटे छोटे बच्चे आ गए, फिर गांव वालों ने, माने वहां के लोगों ने, कराची के, उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके कोर्ट केस कर दिया। ये बच्चे 18 साल के छोटे थे, कम आयु के थे। नोटिस आई और सबको घर जाना पड़ा। बड़ा मुश्किल से रोते रोते घर गए। बच्चे घर गए लेकिन उनके घर का एक घूट पानी नहीं पिया, दो दिन रहे, तीन दिन रहे। और माँ बाप तो टाइम पर भोजन करते थे, बच्चे भोजन नहीं करते थे, कितना भी मनाते थे, सारी अलमारी खोल करके देते थे, बेटा ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ये कपड़े तुम्हारे लिए है, जेवर तुम्हारे लिए है, ये पैसे तुम्हारे लिए है। उन दिनों में 1936 में उन लोगों का बिजनेस जापान, सिंगापुर और अमेरिका में था। अब आप सोच सकते हैं जिसका जापान, सिंगापुर, अमेरिका में बिजनेस होगा वो परिवार कैसा होगा। इतना धनी परिवार, लेकिन इन बच्चों को बाबा ने ऐसा पक्का कर दिया कि वो उनको साधारण चीज दिखाई देता था। वो किसी चीज में आसक्त नहीं हुए, दो दिन रहे, तीन दिन रहे, उनके घर का पानी तक नहीं पिया, खाना और ये तो दूर की बात रही है। और माँ बाप देखे कि ये तो कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, तो उनको आश्रम में छोड़ कर आए, नहीं तुम जिंदा रहो हम तुम्हारे को नाम सुनेंगे, देख लेंगे, हम खुश रहेंगे, लेकिन यहाँ आप शरीर छोड़ दो, नहीं कुछ खाओ पियो, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो माँ बाप फिर से उनको छोड़ दिए, फिर लोगों को कहने से थोड़े दिन में फिर से कोर्ट केस हुआ। जज ने कहा कि एक बार हमने समन भेज दिया, एक बच्चे आपके घर में आ गए, आप लोगों ने अपने बच्चों को नहीं संभाला, फिर मैं घड़ी घड़ी ये काम करता रहूंगा का, यही मेरे लिए काम है? आप लोगों के पास ये नहीं, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते हैं और आश्रम को बदनाम करते हैं कि आश्रम में वो जाकर बच्चे ये हो गए हैं। जज ने खारिज कर दिया उनका केस, और तब से वो संस्था, बाबा ने इनको ज्ञान योग 14 साल तक ये कहीं बाहर नहीं गए, तपस्या कराया। और छोटे छोटे बच्चे बाबा ने उनको ऐसे पाला कि ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। बताइए, दूसरे के बच्चे यज्ञ में आ गए हैं, लेकिन बाबा शिव बाबा थे ना, उनको परख था, उनको ये था, तो ठाकुरों को तरह पाला। अनसीजनल फ्रूट होता है, महंगा होता है, बाबा मार्केट में आता था, बाबा मंगाते थे, बल मांगा हो लेकिन लाओ, हम अपने बच्चे ठाकुर बच्चों को खिलाऊंगा। आम है, सीजन पूरा हो गया, अब आम आएगा मार्केट में तो उसकी वैल्यू होगी ना। तो ऐसी चीजें बाबा मंगा करके बच्चों को अपने हाथ से काट करके खिलाते थे, इतना प्यार करते थे। उन दादियों को बाबा ने इतना बड़ा किया, 14 साल तक उनको तपस्या कराया, पालन किया, केवल सुबह और शाम सागर के कंठे पर, कराची है सागर में, बाबा सागर के किनारे ले जाते थे घुमाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए। और 14 साल तपस्या हुआ, फिर 47 में बंटवारा हुई, सारे सिंधी और सारे लोग हिंदू भारत में आ गए। अब उनके बच्चे, अब वो लोग भारत से फोन करें, बाबा को लेटर लिखे, बाबा आप भी भारत में आ जाओ, पाकिस्तान सरकार बाबा को आने नहीं दे, नहीं बाबा आप यहां हो तो मेरा पाकिस्तान पाक साफ है, आपके कारण हमारा पाकिस्तान सेफ है। बाबा अभी क्या कर सकते हैं, सरकार नहीं छुट्टी दे रही है, जब भी कुछ हंगामा हो शहर में पुलिस आ जाए प्रोटेक्शन के लिए, संस्था को, आश्रम को कोई भी किसी भी प्रकार का ये ना हो। और इधर तपस्या चल रही है, छोटे छोटे बच्चे ट्रांस में जा रहे हैं, जिनको लिखने नहीं आता है बाबा उनको वहीं आश्रम में ही पढ़ाया और उनको ये किया। 47 में बंटवारा हुआ, 51 में संस्था, बाबा ने सरकार को लिखा कि इनके माँ बाप सब इंडिया में हैं, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बच्चों से मिलना चाहते हैं और रूल ऐसा है कि वो भी इंडिया से वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते हैं, तो आप छुट्टी दीजिए, हम जाएं और वहां इनके माँ बाप हैं तो वहां हम रहें। तो सरकार ने कहा कि इस बात पर हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मां बाप को हम बुला नहीं सकते हैं। तो उन्होंने छुट्टी दिया। पाकिस्तान से लोग आए थे, कालपीन लेकर के नहीं आए, सब कुछ छोड़ करके आए। और बाबा का पाकिस्तान से इंडिया आए तो सरकार ने एक उन आलपीन तक नहीं रखा। नहीं बाबा, ये आश्रम का चीज है, परमात्मा की चीज है, मैं नहीं रखूंगा। सब कुछ अपना आदमी लगा करके, पैकिंग करा करके, आलपीन तक स्टीमर बुक करके, और बाबा को बड़े सम्मान के साथ उन्होंने भेजा। ओखा बंदरगाह पर आए, वहां से ट्रेन पहले से बुक किया हुआ था, स्टीमर से उतर के सामान वहां ये किया, आबू रोड आया। इसके पहले आबू रोड की भी कहानी है। शिव बाबा ने कहा कि आपको पाकिस्तान छोड़कर के इंडिया में जाना है, तो इंडिया में जाकर के जगह देखो, क्योंकि इन लोगों के लिए भी इंडिया नया था, पाकिस्तान में रहते थे, और इंडिया में कहां क्या होता है। तो हमारी तीन दादियां जगह देखने के लिए आई, चारों तरफ जगह देखा, इधर उधर गए, कहीं उनको पसंद नहीं आया, कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला कि 400 लोगों को एक कैंपस में हम रखें, इतना बड़ा बिल्डिंग कहां भी नहीं उनको मिला। तो इनका गुरु होता था गंगेश्वरानंद, जो बचपन से ब्लाइंड था, लेकिन वो इतना पहुंचा हुआ गुरु था, उनका आश्रम आज भी माउंट आबू में है। तो वो दूर से कोई आता था तो नाम सहित बोल देते थे कि आप फलाना, आप आ रहे हो, आओ, जबकि वो कभी उन्होंने देखा नहीं, आहट वाइब्रेशन से नाम सहित पहचान करते थे। तो वो दादी दीदी गई तो दीदी नजदीक गई तो दीदी के नाम से पुकारा कि आप आई हो पाकिस्तान से, तो दीदी ने कहा कि जी किस लिए आई, अ तो हम आए हैं कि हम पाकिस्तान से इंडिया में आना चाहते हैं, हम कहां आए हमको आप बताइए। उन्होंने कहा कि आप माउंट आबू जाओ, वहां राजाओं के कोठी बने हुए हैं, किले बने हुए हैं, माउंट आबू आप जाएंगे साइट सीन में तो देखेंगे, भरतपुर कोठी है, सारे राजस्थान के जो भी राजाएं हैं उनका कोठी है, जोधपुर राजा का कोठी है, जयपुर राजा का कोठी है। तो दीदी माउंट आबू आई और सब कोठियां देखी, तो भरतपुर कोठी, भरतपुर राजा का कोठी, बहुत बड़ा कोठी था, वो देखा, उनको पसंद आ गया। और फिर वो तो कोठी बंद था, लेकिन कांच से देखा श्मशान के तरफ, और उधर शहर के किनारे था, वो लगे शांत एकांत जगह है, यहां तपस्या होगी। तो दीदी को पसंद आया, दीदी महाराजा के पास गई भरतपुर में, महाराजा ने बोला कि आपको तपस्या करना है तो ये चाबी लीजिए और आप जाकर के रहिए। वहां से लोग आए 51 में, मई जून का महीना था, वहां से यहां शिफ्ट किए। उन दिनों में 51 की बात कर रहा हूं, बारिश बहुत होती थी, आज की तरह नहीं, इतनी ठंड होती थी उन दिनों में, फैन नहीं होता था, एसी की बात ही छोड़ दीजिए, फैन भी नहीं होता था। तो वो लोग कराची में जीवन जीने वाले, आप समझ सकते हैं कि जो बॉम्बे में रहता है उसको कहीं हिल स्टेशन पर जाना हो, रहना हो, तो उनका क्या हाल होगा। तो वो सब कराची में रहने वाले हिल समुद्र के किनारे में ठंडी क्या होता है उनको कभी पता भी नहीं है, सुना भी नहीं है, अनुभव किया नहीं है। अब जो कपड़ा पहनते थे वही कपड़ा उनके पास था, गर्म कपड़ा कुछ नहीं था। इधर आए तो जून में बारिश यहां शुरू हो जाती है, इतनी बारिश होती है कि 15 दिन 20 दिन तक सूरज दिखाई नहीं देता है, खूब बारिश होती है। तो ठंड हो गया, अब गर्म कपड़ा 400 लोगों को बनवाना हो, रजाई बनवानी हो, कंबल बनवानी हो, कितना खर्चा होगा। और जो पैसा था बाबा का वो धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि इनकम कुछ था नहीं। तो बेगरी पार्ट आ गया, कहां बाबा पिस्ता बादाम अपने वहां पाकिस्तान में कराची में बच्चों को खिलाते थे, नई फ्रूट खिलाते थे, और यहां आकर के बेकरी पार्ट शुरू हो गया। भगवान की ये लीला है, क्योंकि आज आप डॉक्टर बने हैं, आप सब सीनियर डॉक्टर हो, एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, या सीधी डॉक्टर बन गए, सरकार आपको एमडी और डीएम कार्डियोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट की डिग्री दे दिया, एग्जाम आपको देना पड़ा तो डॉक्टर बने हैं। तो बाबा को विश्व महाराजन बनाना था, विश्व महारानी बनानी थी, विश्व को सौंपना था आपके हाथों में, तो क्या वो पेपर नहीं लेगा कि विश्व को चलाने योग्य आप हो या नहीं हो? पेपर आया। शिव बाबा का बहुत ये था, बाबा इतना ब्रह्मा बाबा, अभी बाबा दोनों बाबा हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर सारा डायरेक्शन देता था, रोज आकर के मुरली चलाता था, जो ईश्वरीय ज्ञान जो हम आपको सुना रहे हैं यहां सुन रहे हैं उसको हम मुरली बोलते हैं, क्योंकि दिखाते हैं ना कृष्ण मुरली बजाता था तो गोपियां भाग करके आती थी, एक पांव में चप्पल है एक पांव नंगे है, उनको पता नहीं है कि दोनों पांव में है या नहीं है, जो जैसे थे वैसे भागे मुरली की धुन सुन करके। तो वो बाबा मुरली सुनाते थे, तो ये सब बच्चे एकदम दीवाने मस्त, क्योंकि भगवान की महावाक्य। तो जब यहां आए बेगरी पार्ट शुरू हुआ, ऐसा एक दिन आया, चार आना पैसा नहीं है, 400 बच्चे हैं, लेकिन बाबा को नशा था, ब्रह्मा बाबा को, मालिक तो वही थे, भले उन्होंने कमिटी बना दिया, वो बहने क्या कर सकती हैं, भाई यज्ञ इन्होंने रचा है, मालिक इन्होंने बनाया है, तो सबसे ये तो चिंता इनको होनी चाहिए, लेकिन जरा भी नहीं। बाबा इतने मस्त रहते थे, बाबा को शिव बाबा में 100% नीचे था, ये भगवान का यज्ञ है मेरा यज्ञ नहीं है, तो कुछ भी होता था वो शिव बाबा में उनको नीचे होता था। 400 बच्चे और बाबा स्वप्न देख रहे हैं, मस्ती में है, हम कल ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे, ये हमारा भारत ऐसा स्वर्ग बनेगा, घी दूध की नदियां बहेगी, हीरे जवाहरात के महल होंगे। बाबा वो देख रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि 400 बच्चे हैं इनको क्या दोपहर को भोजन मिलेगा, नहीं, बाबा को विश्वास था कि परमात्मा कभी भूखा नहीं रहता है, तो परमात्मा के ये बच्चे हैं ये कभी भूखा नहीं रहेंगे, इतना बाबा को विश्वास था, 100% विश्वास था। 3 साल तक बेगरी पार्ट चली, लेकिन एक दिन भी ऐसा दिन नहीं आया कि लोग सो गए हैं भूखे, इतना बाबा पेपर लिया। कुछ बच्चे थे उन्होंने कहा कि बाबा हम लौकिक में जाएं, वहां सेवा करेंगे, कुछ मदोगरी करेंगे, कुछ पैसा उन लोगों से लेकर के यज्ञ में भेजेंगे तो यज्ञ में काम आएगा। हां बच्ची क्यों नहीं, भल जा सकती हो। बाबा भेजा नहीं, लेकिन वो जा रहे हैं तो उनको छुट्टी जरूर दिया। वो गए अपने यज्ञ में, मां बाप के परिवार में गए, वहां ही हिल मिल गए, किसी ने बाबा को मदद नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चे रह गए, वो बच्चे ने उनको इतना निश्चय था, मुझे मरना है यहां मरना है, जीना है तो यहां जीना है। एक बार ऐसा भी प्रोग्राम आया, ऊपर से संदेश आया कि आपको 15 दिन ढोढ़ा और छाछ खाना है। सोचिए ठंडी का मौसम, किसी को अस्थमा है, किसी को बुखार है, जुकाम है, और डोडा और छाछ, डायरिया है, डोडा और छाछ खाना है, डोडा और छाछ खाए अस्थमा ठीक हो गया, डायरिया ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ईश्वरीय चमत्कार। अब बेगरी पार्टनर में बाबा ने, शिव बाबा ने आदेश दिया कि बच्चे आप लोग सेवा में, बाबा को कहा कि इन बच्चों को सेवा में भेजो, इतना ट्रेंड कर दिया, इतना होशियार कर दिया। और बच्चों को तो ये था कि हम जिंदगी भर पूरा जीवन बाबा के साथ ही रहेंगे, हमको बाहर बाबा को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। तो बाबा ने मुरलियां चलाई कि आप ज्ञान गंगाएं हो, जाकर के लोगों को उद्धार करो, लोग दुखी हैं। यहां कौन रहता है? तालाब में जो रहता है कीड़े होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, तो क्या आप लोग मच्छर और कीड़े हो? 14 साल तपस्या करके यही करना है? नहीं बाबा, हम मच्छर नहीं बनेंगे, कीड़े नहीं बनेंगे, हम नदियां हैं, जाकर सेवा करेंगे। बड़े अपने दिल को तसल्ली रख करके वो बाहर सेवा में, कोई दिल्ली गया, कोई लखनऊ गया, कोई कहां गया, कोई कहां गया, उसकी भी कहानी है। कितना निश्चय, दिल्ली में गए हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, जिन्होंने ये ढूंढा था, उनको भी भेजा। तो वो दिल्ली गए तो दिल्ली स्टेशन पर उतरे, कुली से पूछते बाहर कहां जाना है भैया? दीदी इधर से चले जाओ, सामने दरवाजा है। बाहर गए तो ऑटो रिक्शा वाले, ये वो कैसे लोग होते हैं स्टेशन पर, और ऑटो रिक्शा वाले कितना अच्छे होते हैं वो तो आप सब भी जानते हैं। वो देख करके हैरान, क्योंकि 14 साल तक ऐसे लोगों को देखा नहीं था, बचपन से देखा नहीं था। बचपन से बाबा ने एक चार दीवारी में 14 साल तक पला, और कहीं गए तो शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में समुद्र के किनारे सैर कराया है, इतना ही उनको पता था। वो जब देखा, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन भगवान में निश्चय, भगवान ने मुझे भेजा है, मुझे सेवा करनी है। उन्होंने पूछा, भाई धर्मशाला यहां होता है? हां दीदी, सामने धर्मशाला है, चलो मैं छोड़ के आता हूं। धर्मशाला के दरवाजे पर छोड़ के आ गया। धर्मशाला वाला बोलता है कि भाई हम 2 दिन रखते हैं, 3रे दिन का आप प्रबंध कर लीजिए, आप आए हो 2 दिन हम जगह देंगे। ठीक है, 2 दिन तो जगह दो। 2 दिन वो जाकर के धर्मशाला में तैयार होकर के, दीदी इतनी रिच फैमिली की, समय ऐसा आया, अभी भाई कहां सत्संग करें, कोई जान पहचान हो तो मंदिर में जाए, इधर जाए, जमुना का कंठा तो सार्वजनिक है, चलो वहां चलते हैं। लेकिन जमुना के कंठा पर बैठेंगे कहां? धर्मशाला में फटी हुई, टूटी हुई बोरी, बोरी तो समझते हैं आप लोग, बोरी था। वो मालिक से पूछ करके, हाँ ये बोरी ले से? हाँ दीदी ले जाओ, ये तो फटा हुआ है। वो ले करके कहां, गलीचों में पलने वाले, दीदी का अंकल का हॉस्पिटल है, जसलोक हॉस्पिटल, उसकी भी कहानी है। जस्सू और लोकुमल, वो दो लोग बहुत पैसे वाले, बाबा के पास पैसे लेकर के आए, बाबा मुझे साक्षात्कार करा दो, ये पैसा ले लो। बाबा ने कहा कि साक्षात्कार पैसे पर नहीं होता है, पैसे पर बेचा नहीं जाता है, बच्चे ये पैसा जाकर के अच्छा काम करो, हॉस्पिटल बनवा दो। वो पैसा ले जाकर के उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल बनाया, तो जसू और लोकुमल दोनों को मिलाकर के जसलोक आज भी चल रहा है। तो दीदी उस फैमिली का, और बोरी टूटी हुई फटी हुई बोरी पर जाकर के तीन दीदियां जमुना जी के कंठे पर बैठ करके किसको ज्ञान सुनाए? कोई अपना हो तो वहां तपस्या कर रही है। माताएं बहने जमुना जी से स्नान करके पूजा करके बाहर निकलती है तो देखती कि 3 देवियां, इतनी इनकी अंदर चमक है, लाइट है, ये कहां से आ गई? तो वो लोग बड़ा माताएं ये होकर के पूछती हैं कि आप लोग कहां से आए हो? तो हमारी दीदी जवाब देती है, हम माउंट आबू पहाड़ से आए हैं। किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं? आ तो हम सत्संग करने आए हैं, योग सिखाने आए हैं। अच्छा आप योग सिखाते हैं, हमको सिखाएंगे? हाँ जी क्यों नहीं, बैठो। सत्संग शुरू हुआ, आधा घंटा सत्संग हुआ, उनको अच्छा लगा। वो पूछते हैं, हम दोबारा आपसे मिलना चाहें तो कहां मिलेंगे? आ तो हम फलाने धर्मशाला में ठहरे हैं। नहीं वहां नहीं रहो, ठीक जगह नहीं है। हमारा कोठी खाली है, हमारा बंगला खाली है, आप आओ मेरे बंगले में रहो। देखो त्याग भाग्य। तो माता ने अपना कोठी दे दिया, वहां सत्संग शुरू हो गई, आश्रम शुरू हो गया और बाबा को समाचार देते रहे। तो वहां से इस तरह से सेंटर खुला। हमारी गुलजार दादी जिसके तन में शिव बाबा आते थे, बाबा पिताश्री के अव्यक्त होने के बाद बाप दादा, आप सुना नाम सुना होगा, तो वो कभी देखा नहीं है दुनिया। वो बाबा ने उनको लखनऊ भेज दिया, लखनऊ गई, धर्मशाला में ठहरी, लोगों ने कहा कि आपको बंगला चाहिए, आपको ये चाहिए, चीफ मिनिस्टर से मिलो। चीफ मिनिस्टर के बंगलों पर चली गई सुबह, सब लोग बैठे थे उनके हॉल में मिलने के लिए, ये भी एक कोने में जाके बैठ गई। चीफ मिनिस्टर अपने रूम से निकला तो सबके ऊपर नजर नहीं पड़ा, इनके ऊपर, क्योंकि दिव्यता, चमक, आकर्षण, वाइब्रेशन। चीफ मिनिस्टर औरों को, बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनको छोड़ करके इनके पास आए। बच्चियां आप लोग किस लिए आए हो? बाऊजी हमको बंगला चाहिए। किस लिए भाई? आ तो हम मेडिटेशन सिखाएंगे, हम यूपी को, लखनऊ को, हम सात्विक सतो प्रधान वैल्यू हम सिखाएंगे लोगों को मेडिटेशन ये करके। बोला कि नहीं, हम कहां से बंगला दे सकते हैं? तो नहीं, आपके पास मिनिस्टर क्वार्टर खाली है। अरे बच्चियां, वो तो सरकारी चीज है, हम कैसे दे सकते हैं आपको प्राइवेट में? नहीं बाबूजी, हमको 3 महीना ही चाहिए, सदा के लिए थोड़ी चाहिए। 15 मिनट तक डिस्कशन होता रहा और सेक्रेटरी बोलता है साहब बड़े लोग बैठे हैं, चलिए तो सही। और वो चीफ मिनिस्टर हटे नहीं कि नहीं, इनको संतुष्ट करके मुझे दूसरे के पास जाना है। लास्ट में कहा कि अच्छा चलो एक बंगला खोल करके, मिनिस्टर क्वार्टर खोल करके इनको दो। मिनिस्टर क्वार्टर खोल करके दिया, दादी वहां शिफ्ट किया और वहां कोर्स शुरू कर दिया। सारे मिनिस्टर आकर के कोर्स किए और वहां मुरली शुरू हो गई। मिनिस्टर मुरली सुन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की वाइफ 7 दिन का कोर्स करके मुरली सुन रही है, वो दिन गिनती कर रही है, दीदी अब तो 3 महीना होने जा रहा है, आप छोड़ के चले जाएंगे और तो और क्या करेंगे, हम तो 3 महीना के लिए प्रॉमिस किया है ना। तो वो उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, हमको हमारा बंगला खाली है, हमारा बंगला खाली है, आप हमारे बंगला की चाबी लो, आप हमारे पास चलो, आप छोड़ करके नहीं जाओ। देखिए चीफ मिनिस्टर के वाइफ ने अपना बंगला दे दिया और सेवा शुरू। तो इसी तरह हमारी दादियों ने इतना त्याग करके सेवा किया है। हमारी दादी जानकी, बाबा आए हुए थे, बाबा जा रहे हैं, उनको बुलाया, इधर आओ, स्टेज पर बाबा के पास आई, आपको लंदन जाना है। बाबा हम तो इंग्लिश जानते नहीं है, हम लंदन जाके क्या करेंगे? अब तो नहीं, आपको मधुबन बनाना है। तो अभी भगवान कह रहा है तो कैसे ना कहेंगे। तो उनको बाबा से छुट्टी लेकर के गई। आज तो हम कहीं एयरपोर्ट पर जाते हैं, स्टेशन जाते हैं तो व्हील वाली अटैची लेके जाते हैं। उन दिनों में इतनी बेगरी पार्ट थी कि व्हील वाली अटैची का नाम निशान नहीं था। तो दादी कंधे पर कपड़े का थैला लटका करके लंदन चली गई। बाबा ने कोई डॉलर नहीं दिया कि जाकर के वहां, जैसे आप अपने बच्चे को कोई बिजनेस के लिए भेजते हो तो पैसा देते हो ना कि जाके बेटा वहां दुकान खोलो, बिजनेस करो। बाबा ने भेजा, टिकट दे दिया। वहां जाकर के अपनी तपस्या से दादी आज लंदन में मधुबन बना दिया है। कितना तपस्या किया वहां। 500 अंग्रेजों का क्लास अलग होता है, 500 इंडियन का क्लास अलग होता है। जैसे ये मधुबन सारा दिन लंगर चलता रहता है, वहां विदेश में भी सारा दिन लंगर चलता रहता है। ये है यज्ञ की हिस्ट्री। बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए, किसी को पता नहीं था, बाबा तो अंत तक रहेंगे, बाबा के साथ ही हम सब जाएंगे। अव्यक्त हुए, कहानियां बड़ी है हमारे साथ, सामने मेहमान आए हैं, हम आपको भी स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप आए स्टेज पर, ले आए मेहमान को, तो बाबा अव्यक्त हुए। कहानी वो बहुत बड़ी है, समय के अभाव है, तो अव्यक्त हुए। और हमारी बड़ी दादी बॉम्बे में रहती थी, बड़ी दादी ने बाबा रात को मुरली चला करके बच्चों को डिस्कोर्स दे करके आ रहे हैं, ये दरवाजे से लौट रहे हैं, तो हम सीधा मुंह करके जाते हैं, बच्चों की तरफ पीठ करके जाते हैं, कोई निकलता तो ऐसे ही जाते हैं ना, बाबा कभी भी नहीं, पीछे के तरफ से चलते थे। तो दरवाजे पर जाकर के लास्ट के दिन बाबा कहते हैं, बच्चे निराकारी निरहंकारी निर्विकारी भव, और बाबा आज विदाई लेता है बच्चों से। बच्चों को तो ये ख्याल नहीं है कि बाबा अब आधा घंटा में 15 मिनट में अव्यक्त हो जाएगा, ये तो किसी को ख्याल नहीं था। बाबा रूम में गए, साथ साथ दादियां गई रूम में, बड़ी दादी थी, बड़ी बाबा ऐसे पांव लटका करके चारपाई पर बैठ गए, बड़ी दादी सामने खड़ी है, बाबा बड़ी दादी के हाथ में हाथ दे करके दृष्टि दे रहे हैं, सारा पावर बाबा दादी को दे रहे हैं, और 5 मिनट में बाबा का हाथ ठंडा हो गया, ढीला हो गया। तो दादी कह रही क्या हो गया, बाबा का हाथ तो ठंडा हो गया। तो चारपाई पर तो बैठे थे, तो उनको लिटा दिया गया, डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि बाबा नहीं है। दादी पूरा कंट्रोल किया, सबको बुलाया, और 21 तारीख तक भोग लगा, संदेशी ऊपर गई, बाप दादा दोनों आ गए, और तब से अव्यक्ति पाठ चल रहा है और आगे इतना बड़ा है। तो तब से अव्यक्ति पाठ, तो दादी जी को बाबा ने, दादी जी को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, दीदी को ज्वाइंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, और कहा कि नहीं। तो दादी वतन में गई भोग लेकर के, 21 तारीख को हमारा रस्म है कि संस्कार करने के बाद भोग लगाया जाता है, दादी भोग लेकर के गई। तो दादी भोग लेकर के गई तो बाबा को पूछा, क्यों बच्चों ने उलाहना दिया था कि बाबा बताए नहीं, क्यों नहीं बताया कि हम जा रहे हैं, आपको बताना चाहिए, आपने तो प्रॉमिस किया था। तो बहुत सारे उलाहना दादी को दिया और भेजा, जाकर के बाबा को उलाहना दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची हम गए कहां हैं, खाली कपड़ा ही चेंज किया है ना, स्थान ही चेंज किया है ना, हम तो आपके साथ हैं। बाबा आ गया, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं आ गई, तब से अव्यक्ति पाठ चलता है। और तब से जो भी संस्थापक हैं वो जाते हैं तो उनकी संस्थाएं नीचे चली जाती है, या उनके योग्य होते हैं तो वहां थमा कर रखते हैं। ये संस्था बाबा के अव्यक्त होने के बाद दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती गई। बाबा के टाइम में 100-125 ब्रांचेज था, आज वो भी इंडिया में था, और आज 140 देशों में ब्रांचेज है। तो बाबा ने कहा कि हम गए कहां हैं, हम तो आपके साथ हैं, खाली कपड़ा जरूर बदला है। तो बाबा किस लिए बदला है, इस शरीर में होता तो घड़ी देखना पड़ता है, लोगों से मिलने के लिए ये करना पड़ता, अभी तो ये शरीर से ये हो गया, रात भर यहां आकर के बाबा के मिलन मनाओ, बाबा आपके सारी बातें सुनता है करता है। और देश विदेश में बाबा हर बच्चों के पास चला जाता है, इस शरीर में रहेगा तो अमेरिका जाना होगा तो वीजा लेना पड़ेगा, लंदन जाना होगा तो अलग वीजा लेना पड़ेगा, अब तो बाबा इन सब बातों से फ्री हो गया, एक सेकंड में जहां चाहिए वहां गया, और आज भी बाबा चला रहा है। हमने कहा ना स्वागत में कि परमात्म प्रेरणा से ये ज्ञान सरोवर बना है। आप कहेंगे कैसे भगवान प्रेरणा दिया, हमारे सामने की बात है, रात को 12-1 बजे बाबा विदाई ले रहे हैं, दादी जी को बुलाया, दादी जी को कहा कि आप इतने बच्चे आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि इन बच्चों को कहां रखना है। दादी जी ने कहा कि ये हिल स्टेशन है बाबा, यहां मकान नहीं मिलते हैं, जमीन नहीं मिलते हैं, मकान बनाना बड़ा मुश्किल है, नो कंस्ट्रक्शन है। बाबा ने कहा कि सब कुछ हो जाएगा। दूसरे दिन ये दूध वाले साल गांव जो यहां देख रहे हैं, ये गांव वाले आए और बोले कि दादी जी से मिलना है। क्या बात हो गई भाई? अच्छा नहीं, दादी से मिलना है। अच्छा चलो, जाकर के दादी को बोला, दादी दूध वाले आज आपसे मिलना चाहते हैं। दादी ने कहा बुलाओ। दादी के पास गए तो कहते हैं कि मेरे बच्चों की शादी करनी है, ये जमीन निकालना है, पहले हम बाबा के घर में आए हैं, आप नहीं लेंगे तो बाजार में जाएंगे। दादी ने कहा कि नहीं, आप बाबा के घर में आए हो तो हम जरूर ये करेंगे। हम चार पांच भाइयों को दादी ने भेजा, हमको पसंद नहीं आया, कटेली झाड़ियां पत्थर और खंडहर था। जाके दादी को सुनाया, दादी ने कहा कि हमको, हम जा सकते हैं? हम बोले दादी आप नहीं जा सकते हैं। दादी बोली क्यों, आप जा सकते हो तो दादी क्यों नहीं जा सकती है? तो दादी पगडंडी है, दादी पगडंडी में आएगी। दादी पीस कॉटेज के सामने कुछ नहीं था, वहां पहाड़ी पर खड़ा होकर के 15 मिनट जो किया और दादी बोला कि इसको ले लो, और दूध वालों को दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन करा दिया। कहानियां बहुत लंबी है, समय हो गया है, साहब आए हैं तो हम साहब का सम्मान करेंगे। बिहार से हमारे लोकसभा के अनुभव आप ही खुद सुनाएंगे, हम बहनों को कहेंगे।